ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरु महाराज घर छोड़ने के पश्चात गांव ही के पास में एक झाड़ी में रहा करे। पहलवानों ने वहां पर, पहलवानों के उस्ताद थे, तो जितने पहलवान थे उन सब ने बगीचा लगा दिया। थोड़ी दूरी पर अपना अखाड़ा खोल लिया। देखा देखी वो भी भजन किया करे। जब 4 महीने में भजन ये जागृत हो गया, तत्पश्चात सब ने कहा, संत जी हम लोग सुबह कीर्तन नगर फेरी किया करें, आप भी साथ चलें। तो ढोलक हारमोनियम मजीरा वगैरह लेके सब चले आए। बोले आप 5 बजे हमको जगा दिया करें, गुरु महाराज 2 बजे उठ के भजन में बैठ जाया करें। 6 बजे तक बैठे, फिर 1 घंटा भ्रमण करके फिर बैठे तो 10 बज जाए, और ये नियम टाइम टेबल बंधा हुआ। 5 बजे जगा दिया करें, सब ढोल हारमोनियम लेके आगे आगे चल दे, महाराज भी चल दे साथ साथ, सीताराम 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 सीताराम, पूरा रामकोला ग्राम की परिक्रमा करके मंडली चले आवे आश्रम। कुटिया में धुने में प्रणाम करके विभूति लगावे खावे और अपने अपने घरे चले जाए, कोई किसी से बोले ना। शुरुआत में 15 आदमी थे, फिर आदमी बढ़ने लगे। जिस रास्ते से जाए लोग अपने अपने घरों में चप्पल जूता पहन के तैयार रहे, ये मंडली में शामिल हो जाए। 4 महीने में तो करीब 60-70 आदमी हो गए। एक यहां से 15 ही चले आश्रम से, फिर बढ़ते ही चले जाए, लौट के आश्रम में आवे तो 70 करीब आदमी हो जाए। सीताराम 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 सीताराम, आके सब प्रणाम करें, कोई किसी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप प्रणाम करे चले जाए। एक दिन महाराज बैठे थे, महाराज भूल गए कि हमें इनको जगाना है। इतने में 6 बज गया। बड़बड़ा के सब उठे, बोले अरे संत जी आपने जगाया नहीं। महाराज कुछ बोले ही नहीं, क्या बोले, चूक तो हो गई महाराज के। हम बैठे थे, हम देख रहे थे, चित से उतर गया कि हमें इनको जगाना है। हम सोए नहीं थे, सचेत थे। इतने में गांव से आए लोग 4-6 इस मोहल्ले से, बोले संत जी किस रास्ते से निकल गए, बड़ी मधुर धुन कान में सुनाई पड़ रही थी, हम चप्पल पहन के खड़े थे, यहाँ आएगी मंडली तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन रास्ते से आप आए ही नहीं। महाराज बोले ही नहीं, चुप शांत बैठे रह गए। इतने में दूसरे मोहल्ले से आए, फिर तीसरे टोले से आए, फिर चौथे टोले से आया, दस आदमी इस मोहल्ले से, 25 आदमी उस मोहल्ले से, महाराज किस रास्ते से निकल गए? और कोई रास्ता ही नहीं था। बड़ी मधुर धुन कान में पड़ रही थी वाद्य के साथ, आप किस रास्ते से निकल आए? जब 8-10 जगह से लोग आए तब महाराज समझ गए, बोले भैया आज कीर्तन हुआ ही नहीं, हम बैठे थे, हम हमारे चित्त से उतर गया कि हमें इनको जगाना है, वास्तव में भूल गए थे। तो बोले कीर्तन हम लोगों ने सुना, किया किसने? बोले भाई आज कीर्तन भगवान ने खुद कर दिया, अब तुम लोग कीर्तन करो, हम कीर्तन नहीं करेंगे, हम केवल भजन करेंगे। जब भगवान में इतनी क्षमता है, मंडली का रूप धारण कर सकते हैं, ढोल हारमोनियम बजा सकते हैं, सबके कंठ के स्वर में बोल सकते हैं, तो फिर मैं केवल भजन करूंगा। एक चमत्कार गांव भर ने देखा सुना, उस दिन से गुरु महाराज कीर्तन जाना बंद कर दिया, जो समय कीर्तन में देते थे वो श्वास में देना शुरू कर दिया, आगे बढ़ गए और रात दिन भजन करें। और भगत लोग जो सागरित थे, घर में थे तब के पहलवानी सागरित, नामजद पहलवान थे 2500 गांव के, तो सागरित वहां अपना दंड बैठ लगा, भाई झाड़ू साड़ू लगा दे, बाजू का एक बगीचा था उसमें से कोई आम चोरी कर लिया करे, तो बगीचे का मालिक रोज हल्ला मचावे, बोले संत जी संत नहीं है, संत जी के यहां लोफर टिके रहते हैं, रोज हमारा आम तोड़ ले जाते हैं। तुम्हारा ने कहा भैया हमसे तुम्हारे आम से कोई मतलब नहीं है, आम तो हिलते भी नहीं यहां से, नहीं हमारा कोई आदमी जाता है। बोले हाँ, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा, चोर लोग ऐसे ही बोला करते हैं, ऐसे ही बोला टाला करते हैं। 15 दिन लगातार वो रट लगाए रह गया, तब वो महाराज के वो पहलवान भक्तों ने कहा, बोले महाराज अति हो गया, आज हम इसका बगीचा उजाड़ देंगे, एक भी आम नहीं छोड़ेंगे, बहुत लांछन लगा चुका, समझाने से भी नहीं मानता, हम लोगों से मतलब नहीं। महाराज के हो ससुरा बहुत तंग किए रहा, हमारो मन हो ही जा रहा कि दो जब जड़ी जाए दिमाग खराब कर दिया। वो बोरा लेकर आम तोड़ने वाला अस्त्र शस्त्र होता है उधर, वो बांस और वहां सिया और यंत्र लेके चले आए और सिराने रख के सब सो गए। बोले संत जी आप तो 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं ना, 2 बजे हम लोगों को जगा देना। महाराज विचार किए मैं जगाऊं या नहीं, इतने में गांव से एक आदमी निकला, वो रोज निकलता था 12 बजे, उस दिन निकला 2 बजे, गांव से निकलते ही आवाज निकाला, धन पर आव बिखते बिख भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। महाराज बोले हैं कौन बोल रहा है इतनी रात को, और बात कुछ गोल माल सुनाई पड़ी। इतने में चलते हुए कुटिया के बाजू में आया और फिर ललकारा, धन पर आव बिखते बिख भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। जहां महाराज ने भली प्रकार सुन लिया, धन पर आव विष से भी विष बड़ा होता है, विष से बिख भारी, तब महाराज को अब सुगन होने लगा, तर 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 बाई बाह फड़कने लगी। बोले अच्छा तो ये हम पाप करने जा रहे हैं? बोले और क्या? तो बोले अच्छा भगवान नहीं जगाएंगे, तो फड़कना बंद हो गया। सुबह बड़बड़ा के उठे, बोले अरे संत जी जगाए नहीं। बोले अरे चुप चुप, भगवान मना कर गए रे, बोले अच्छा महाराज भगवान आए थे, बोले हाँ। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, वो लांछन लगाना बंद कर दिया, गाली देना बंद कर दिया, उसके मन में क्या प्रेरणा हो गई। फिर वो नहीं कहे कि महाराज आप चुराते हैं कि आपके चेला चुराते, पता नहीं उसको किसने मना कर दिया। भगवान उर प्रेरक है, वो जो आपको हमें बता सकते हैं तो उसके हृदय में भी प्रेरणा कर सकते हैं। तो महाराज कुटीर में एकांत में भजन किया करें मन लगे, लेकिन जब सत्संगी महाराज भ्रमण करके वहां पहुंचे उस दिन मन ज्यादा लगे। तब गुरु महाराज ने पूछा, महाराज मन तो लगता है लेकिन आप जब आ जाते हैं, जब जब आते हैं तब तो मन ज्यादा क्यों लगता है? तो बोले कि तोरे मनवा के पकड़ के मैं ध्यानस्थ हो जावा करत हूं। तो महाराज चिंता में पड़ गए। गुरु महाराज के तीन चार और शिष्य थे हमसे पहले बड़े गुरु भाई, वो कुछ दिन अभ्यास करके फिर घरे चले गए बौड़ी आए के। कहीं यही कारण तो नहीं है? कुछ दिन तो गुरु महाराज उनके मन को पकड़ के ध्यानस्थ हो गए, और जन्म भर कोई किसी के मन को पकड़ के कहां तक ध्यानस्थ रहेगा? जहां छोड़ दिया उनका पुराना मन जग गया, फिर बटबटा के, और जो नहीं मन का संतुलन बैठा तो भाग गए घर। कहीं यही घटना हमारे साथ में हो जाए? भीतर भीतर संकित हो गए। तब प्रार्थना किया, सादर प्रणाम करके बोले, भगवान आप मेरे मन को न रोके, आप ऐसी कृपा करें कि मैं स्वयं अपने मन को रोक सकूं, आप इसके लिए कष्ट न करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं ही सफल हो जाऊं। तब सत्संग महाराज बोले, ठीक ऐसा ही होगा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। फिर भजन करने लगे। कुछ ही समय में जैसा सत्संग महाराज पकड़ के रोकते थे वैसी ही पकड़ आ गई स्वयं। महाराज का वैसे ही ध्यान लग जाए विधिवत। इसका नाम था परकाया प्रवेश। किसी के काया में प्रवेश करके मन को पकड़ के जैसा चाहे वैसा रोक लें, छोड़ दें, कुछ प्रेरणा कर दें। तो वैसे तो रात दिन भजन करें, जब गुरु महाराज आ जाएं तो सेवा में तत्पर रहें। तो वो कोई साधारण कुटिया झोपड़ी, एक हैंडपंप लग गया था थोड़ा दूर, गुरु महाराज को नहलाने के लिए हैंडपंप पर ले गए। गुरु महाराज बैठ गए हैंडपंप के नीचे, लंगड़े बाबा महाराज चलाने लगे और गुरु महाराज नहाने लगे। इतने में एक बिटिया 16 साल की आई घड़ा लेके, कभी पैतरा बांच के इधर खड़ी हो जाए, फिर इधर खड़ी हो जाए, फिर इधर खड़ी हो जाए, कभी इधर। तो महाराज उसकी ओर देख लिया करें, थोड़ा धीरे धारण कर गुरु महाराज को नहा लेने दे। महाराज के ही आश्रय था, वो ऐसे नहाते नहाते जान गया है बिटिया की ओर देख रहा है। देखा नहीं था, वैसे वो अंतर्यामी थे वो महापुरुष, बोले देख रहा है। बोले बंद कर बंद कर, चलाना बंद कर। उठ के खड़े हो गए, भर भर गड़ा भर, जो 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 भाग यहां से चले गए। फिर बोले मछली कैसे मारा जाता है जानता है? देख कटिया में ऐसे चारा चिपका के ऐसे फेंक देते हैं, और फिर बाद में मछली पहले दूर से देखती है और देखेगी और चली जाएगी, फिर आएगी थोड़ी लुबुर लुबुर चाटेगी और फिर चली जाएगी, दो तीन बार तो ऐसा ही एक्शन करेगी, फिर आएगी दौड़ के गप देना पकड़ लेगी तो कटिया उसके गाल में ऐसे फंस जाएगी, जहां डोरा हिला तो जो मारने वाला है ना वो उठा के पटक देगा धोए देना इसे। जानत है? तो बोले हाँ गुरु महाराज जानत हो। फिर सर्वा कहते जानत हूं? बोले देख रहे हैं, पहले ऐसे कटिया में चेहरा चिपकाए के और फिर बाद में वैसे फेंक दिए थे, फिर मछलियां दूर से पहले टुकड़ टुकड़ ताकत थे, फिर आस्ते आस्ते करीब आवत थे और फिर लुबुर लुबुर चाटते थे और फिर दो तीन बार और फिर गप देना पकड़ लेते तो ऐसे पकड़ गटिन फंस जाते ऐसे। बोले अरे महाराज मैं मारे हूं मैं जानत हूं। बोले फिर सर्वा कहते मारे हूं जानत हूं? गर्दन पकड़ के महाराज के गुरु महाराज के हमरे साधक तो थे लड़के ही थे, गर्दन पकड़ के गाल में ऐसे उंगली डाल के और पटक के बोले ऐसे फंस जाते हैं तरे और ये ऐसे खींच देते और हेत्र पटक दे तो पटक दिया, अब दिया 50 गाली। फिर कहते जानत हूं? महाराज चुप बोल बेने कृ पता नहीं कहा कहते चुपचाप वो सत्संग महाराज बड़बड़ाते चले आए। फिर दो पैर बस यहाँ आए आस कुटिया में बैठ गए। 2 बजे के बाद शाम को 3 बजे करीब जब 2 बजे के बाद जब भगत लोग आए तो सत्संगी महाराज को प्रणाम किया, फिर उधर बड़े बोले कहाँ जाते? बोले जरा संत जी को प्रणाम कर ले। बोले लेकिन संत जी की ऐसी तैसी तो हर संत जी सर मेरी ताकत है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं संत जी? बोले भाई हमें तो नहीं मालूम। बोले का ताकत रहा रे वो बिटीवा के का ताकत रहा? बोले रे महाराज कोई दुर्भावना नहीं, हम यही कह रहे थे कि गुरु महाराज को स्नान कर ले, थोड़ा धीरे धार कर। बोले तो ही हरामी की साले, पहले ऐसे ही टुकुर टुकुर ताका जाते फिर लुबुर लुबुर छुआ जाते, अब 50 गाली दिया फिर महाराज ही बताया करे। तो इतना तगड़ा उपदेश हो गया गुरु महाराज हम लोगों को पूरे ऐसी चाप चढ़ाया रहा करें ये किस्सा बराबर सुनावे। उस दिन से महाराज सदैव सतर्क, उठना बैठना चलना, माई लोगों को एक तरफ बैठाना, पुरुषों को एक तरफ बैठाना, ये गुरु महाराज की एक असीमित शिक्षा का अंग बन गया। भूख प्यास का आस्ते आस्ते भान ही मिट गया। पहले घर ले जाने के लिए गांव भर मना रहा था, माई आग बबूला होके मना रही थी। फिर अंत में सब हताश हो गए, भाई अब नहीं जाएंगे घर। जब कोई मनाने वाला नहीं रहा तो महाराज के घर वाली श्रीमती जी मनाने के लिए चली। एक दिन रात को 9 बजे सोलहों सिंगार करके आवाज सुनाई पड़ी महाराज को, भजन में बैठे थे छन 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 छन। तो महाराज सोचे कोई माई दाई जा रही है, फिर वो आवाज घूम गई कुटिया की ओर। तो बोले हैं इधर कैसे इधर घूम गई आवाज? तो जब उतनी दूर रह गई तो पहचाना। बोले ओ ये तो श्रीमती जी चली आ रही है। निगाह पड़ते ही महाराज को अपसुगन हुआ कि इसकी नीयत खराब है, भगवान बता दिया कि नियत खराब है, तो महाराज बचाओ में पहले ही सिर ललकार के बोले कौन है, बोले हम ही तो हैं और के है, बोले तुम्हें इतना श्रृंगार पटार, आधी रात को घूम रहे श्रृंगार पटार करके, तुम्हें श्रृंगार पटार कहाँ शोभा है, तो बोले क्यों मैं राड हो गई हूं क्या, जिसका पति साधु हो गया हो वो राण नहीं तो और क्या है, महाराज के मुख से निकला। आग बबूला हो गई, जितना जेवर पहने रही, चांदी के तो पहनते रहे, वो कंपल्सरी था चांदी का पहनना, गरीब बन के वो लोगों की उनमें चांदी की हौसली, चांदी के कड़ा, चांदी के छल्ला, ये सब करधनियत जेवर पर्याप्त था, मजे में थे, बहुत धनाढ्य थे, उसमें सब निकाल के महाराज के ऊपर खींच खींच के लगी मारने। महाराज भजन में बैठे, लगी खींच खींच के मारने, जो कुछ जेवर था सब उठा के महाराज के ऊपर फेंक दिया, चाहे पत्थर से मारो, चाहे लोहे से मारो, चाहे चांदी से मारो, चाहे सोने से मारो, जो कुछ सोना चांदी था सब उठा के महाराज को मार दिया। महाराज शांत बैठ गए, बोले त्रिया चरित्र पर उतारू हो गई, आँख बंद करके बैठ गए। महाराज के वो बड़ी चोट लगी, हम चुप हो गए। जब देखा कि हमारे मारपीट का कोई प्रभाव नहीं है, तब चिल्लाई बड़ी जोर से, करके रोई, पूरा गांव दौड़ पड़ा, कौन है, औरत को किसने छेड़ा, किसी औरत को छेड़ा है किसी ने। जब गांव आ गया, गांव इकट्ठा हो चला, तो उतनी दूर बैठ के रोने लगी। महाराज के जो सुस्किए भर भर के रोवे, जैसे कोई घटना घट गई हो। बोले संत जी क्या बात है, संत जी क्या बात है, बोले भैया हमें नहीं मालूम क्या बात है, इसी से पूछ लो जोन बात हुए। महाराज के हम मने मन डराई, न जानी का कही, लेकिन कह का जब कोई बात हो तब तो वो रोते चली जाए। जब वो देखा दृश्य लोगों ने, महाराज की चोट भी दिखाई पड़ी, जाता खून भी, तो बोले ओ ये फेंक फेंक के मारे है, तो बोले करे कोनो पशु है जो मारपीट के बस में कर लेगी, जो प्रेम से नहीं बस में कर सका तो क्या मारपीट के बस में कर लेगी। त्रिया चरित्र फैलाए पड़ी है, सब गठड़ी में बांध के उसी की चादर में वही के सिर पे रख दिया। बोले भागर बस अब मत दिखाई पड़ना, चलेगी फिर कभी नहीं आई। चिंतन शांति से चलने लगा। गुरु महाराज ने जब घर छोड़ा, उसी समय एक घटना घट गई। एक वर्ष में घर के 11 सदस्य मर गए, एक मर गया, लाश ला के कुटिया के दरवाजे पे रख दे, माई आवे बोले फूंक इसके, जब से तू घर छोड़ दिया तब से घर में हाय समा गई, चल फूंक। लाश रखी रहे काफी देर, दिन भर, फिर लोग ले जाए फूके, तेरे ही बीते कि दूसरा मर जाए, फिर तेरे ही बीते तीसरा चौथा, हर लाश लाके कुटिया पर रख दे। माई कहे जब से ढोंग धतूर करने लगा तब से देखो घर में हाय समा गई, और सब मर रहा, घर खड़ियान हो गया, और लाश लाके दरवाजे पे रख दे, ले फूंक ले जाके दाह संस्कार कर, महाराज को भगवान बता दे अनुभव में, आज एक और मर जाएगा। इसकी आयु पूरी हो गई, इसको मरना ही है। घर में रहता तब भी मरता, नहीं है तब भी मरना है। कभी कभी सत्संगी महाराज आमेर बता दे, देख रहे कल एक और मर जाए, उसकी तो आयु पूरी हो गई और तुम्हारी परीक्षा है, डटे रहना। एक एक करके 11 आदमी मर गए, अंत में वो मर गया जिसका घर छोड़ते समय गुरु महाराज को भरोसा था कि हम घर छोड़ दिए तो क्या हुआ, ये संभालेगा गृहस्थी। बड़े भैया जिन्होंने गुरु महाराज को पहलवानी करवाया था वही मर गया। अब तो धीरे छूट जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने कहा इसका अब समय पूरा हो गया है पृथ्वी पर और तुम्हारी परीक्षा है। महाराज डटे रहे, भगवान के आदेश का बराबर पालन करते रहे और घर की बड़ेरी चढ़चढ़ चढ़चढ़ करे। रात में लोग भाग के घर के बाहर चले आवे जैसे कोई पकड़ के हिला रहा है, खपरेल वगैरह गिर जाएंगे। माई कहे घर में हाय समा गया, घर में भूत समा गया, प्रेत समा गया। कबीर जब साधु हुआ तो उसकी माँ हल्ला मचाया करे, हमारे कुल को नहीं राम कही, जब से कबीरा राम कहने लगो घरों की संपत्ति बही, हमारे कुल को नहीं राम कही। यही बात गुरु महाराज की माता जी भी दोहराया करे, हमारे कुल को नहीं राम कही, जब से ये राम राम कहे लगा हमार कन्हई, तब से घरों की संपत्ति बही। देखो घर खड़ियान हो गया। एक दिन भगवान ने आदेश दिया इन सब घटनाओं के पश्चात, देख जहां तू बैठा जिस धुनी को ताप रहा है, हल्की सी बगीचा में पेड़ के नीचे झोपड़ी थी, जिस धुनी को तू ताप रहा है इस धुनी की विभूति उठा, ले ले एक मुट्ठी, घर जा, घर की हर कोठरी में छिड़क दे, चारों तरफ छिड़क दे। और खड़े खड़े छिड़क के खड़े खड़े लौटिया, आज से न बड़ेरी चढ़चढ़ करी और नहीं कोई मरी, आज से उत्पात समाप्त, जो जिंदे हैं वो जिएंगे और हर प्रकार की बरकत होगी, समृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो भगवान का आदेश था महाराज के, हमें कोई चिंता नहीं थी, भगवान का आदेश था। गए गए तो माता जी घर के ठीक सामने गल्ला सल्ला मारने का खड़ियान था, वही में कुछ और सावत रही, कुछ इकट्ठा कर रही, कुछ झाड़ू से ठीक कर रही, जो खड़ियान उठाया जाता है। देखा तो बोले आखिर शंखुआ बाजल, बाबा के पदा के बाजल, आखिर आवा घर खड़ियान करके आवा। उसने सोचा कि आ गया। महाराज सीधे घर में गए, सब जगह विभूति छीट दिया, कोठड़ी कोठड़ी सब में, फिर चारों तरफ घर के घूम गए, सब जगह छीट दिया, घर के सामने छीट दिया, माइयों के चारों तरफ छीट दिया और बोले माई अब ने बड़ेरी चरचर करी, ने भूत समाई, ने कोई मरी और बरकत हुई, अब सब आगे फली फूली जो है वो रहेंगे और बढ़ेंगे, और चुपचाप चल दी। तो मातरिया बिगड़ी, बोले सब मर जाए, जो जिंदे वो मर जा, तू रहो। हमें किसी की परवाह नहीं, तू रहो, तू कहां भागा जात रे। महाराज चुपचाप चले आए, वो बड़बड़ाती रह गई पीछे से, तब मचाया हल्ला, फलाने बाबू दौड़ो रे, फलाने भैया दौड़ो रे, फिर भागा जात रे, मचाया हल्ला, लोग इकट्ठे हूं। इतने महाराज चुपचाप चलते हुए चले आए कुटिया में, पीछे पीछे भीड़ भी चली आई। फिर आके देखा संत जी अपने आसन पर बैठ गए, थोड़ी देर में वास्तविकता समझे तो सब शांत रहे। बोले महाराज अब कोई नहीं मरेगा? बोले नहीं। बड़ी चरचर हो रही थी वो, बोले बस खत्म। फिर कभी कोई कुछ भी नहीं हुआ, तब से इतने फले फूले कि बाढ़ आ गई। तो गांव के बड़े जमींदार थे नडेर रहीश, वो घोड़े से चढ़ा करें, बोले अरे ये हम लोगों के सेवा परिवार के लड़का, इनको तो सेवा में होना चाहिए। भजन करने लगे, एक मुकदमा दायर कर दिया, दो एक बीघा जितना रहा हो जमीन में अपने नाम करके और मुकदमा कर दिया, जबकि थी महाराज की, इनके परिवार की। यदि राम नाम सच्चा हो तो जीत के दिखावे। चलता रहा मुकदमा। एक दिन गुरु महाराज के गुरु महाराज सत्संगी महाराज के कई आवाज पड़ी, बोले करे राम नाम को ललकार रहा ये ठाकुर, तुम जाओ, जाके खड़े हो जाओ, जज का स्वरूप पकड़ के जो जो तुम बोलोगे, संकल्प करोगे, वही वो फैसला लिखेगा। अंतिम तारीख है? बोले हाँ कल। तो बोले जाओ तुम। तो गुरु महाराज बोले महाराज आप क्यों चक्कर में पड़ गए, ये दुनिया है, जब हम घर छोड़ दिए तो हमसे क्या मतलब, खेत कोई ले ले, घर कोई ले ले, लड़के बिलाए जाए, सब खत्म हो जाए, हमसे मतलब। बोले नहीं जी, राम नाम को चैलेंज दिया है उसने, राम नाम सच्चा है तो जीत के दिखाओ, राम नाम सच्चा है, तुम जाओ, मैं कहता हूं इसलिए जाओ, स्वरूप पकड़ के जो जो कहोगे वही वो लिखेगा। बरकाया प्रवेश की विधि बता दिया, चले गए महाराज। तो ठाकुर साहब 8-10 नाल बंदूक लेके और एक चौकी पर बैठे थे बाहर इजलास के, आइए संत जी जलेबी खाइए, मैं जीत गया हूं ना, आप भी खाइए। देखा सुन लिया, चुपचाप आगे चले गए। इजलास में गए तो जस्सा फैसला लिख रहे थे, थोड़ा लिख ले गए थे एक पैराग्राफ करीब, महाराज की ओर देखा, महाराज खड़े होके जैसे गुरु महाराज बताए वैसे ही चिंतन करने लगे। तब नजर उठा के देखा महाराज की ओर, लिखा लिखा एक कागज तो दरेज में फेंक दिया और दूसरा कागज निकाल के लगे लिखने। महाराज की ओर देख जाए, लिख जाए, फिर देख जाए, फिर लिख जाए और फैसला सुना दिया, ये जमीन संत जी की है और पुश्तैनी है। महाराज छलक के बाहर आए, बोले ला खिला जलेबी, देख मैं जीत गया हूं, अब तू सब ले ले, हम साधु हैं, हमसे जमीन जायदाद गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, तुमने राम नाम को ललकारा है इसलिए हमें आना पड़ा, देख राम नाम सच्चे इसलिए आना पड़ा। इसके बाद वो ठाकुर साहब इतने बढ़िया भगत हुए, सदैव भगत रहे। पता नहीं कैसे गुरु महाराज जब घोर जंगल में आ गए गायब होके, यहां तक वो पहुंच गए, वो श्रद्धा थी ना। आहिस्ते आहिस्ते रोज चाहें कि हे प्रभु अनुमति दें हम कहीं चले जाएं, भगवान आदेश न दें। गांव वाले कोई कहता है टीबी हो गया, कोई कहता घर में खटपट हो गई इसलिए बैठे हैं, गांव का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध इसलिए गांव से बाहर कहीं अनुमति दें हम निकल जाएं, आदेश न मिले। आस्ते आस्ते भक्तों ने जो फूल पत्ती लगा दिया था कुछ फलदार पेड़, उनमें बौर आने लगे, फूल आने लगे। तब महाराज के हमारे मन में विचार आया, जो बौर आने लगा है, फल के वृक्षों में जो फूल आने लगे हैं तो फल भी आएंगे, अब फल फूल खाऊंगा, पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा सदैव। हल्की सी बगीचा में ममता आ गई, वो अच्छा लगने लगा बगीचा। उस दिन भगवान ने आदेश दिया, प्रयागराज जाओ। महाराज क्या, हमें इतनी खुशी हुई जैसे कोई पिंजड़े से पक्षी उड़ चला हो। हम तुरंत कमंडल उठाया, चल दिए, पांच छह भगत पीछे लग, गांव के भगत लोग बोले संत जी कहाँ तैयारी, बोले प्रयागराज, बोले हम लोग भी चलेंगे, वो भी पीछे लग गए। पांच साल उस कुटिया में रहने को मिला, जरा सी बगीचा ममता हुई, भगवान बोले उठो यहां से, पहुंच गए प्रयागराज। प्रयागराज में इधर उधर स्नान स्नान किया, नाव में बैठ गए, दो संत और बैठे हुए थे विष्णु संत, उनका एक बड़ा वाला लोटा, विष्णु के होते ही बड़े बड़े, वो गोल मटोल बड़ा सुंदर लोटा रखा हुआ था। महाराज उसको सुंदर लगा तो महाराज ने उठाया, मिट्टी रखी हुई थी, मांझ के चमका के उसको रख दिया। वो दोनों साधु देख रहे थे, बोले कुछ नहीं, और शास्त्रार्थ चलने लगा, प्रश्न परिप्रश्न करने लगे। गुरु महाराज के साथ जो लोग थे वो बड़े सत्संगी थे, क्योंकि गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे सत्संगी महाराज उनके चेला थे, तो मार प्रश्न उत्तर चलने लगा। महाराज के हम भी बताया करें, वो न माने। जब काफी देर लोटे से पानी नहीं चुआ तब बोले महाराज आप लोग जो कुछ कहते हैं सही कह रहे हैं, हम लोग तो इस शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र में लिखा है, पढ़ लिख के रटंत विद्या है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। दो साल से लोटा फूटा हुआ है, 15 मिनट में लोटा खाली हो जाता, कभी पानी टिका ही नहीं, आपने भगवान छू दिया, तब से हम देख रहे हैं कि पानी नहीं गिर रहा इसमें से, जब फूटे लोटे में पानी टिक सकता है तो आपकी बात बिल्कुल सच है महाराज। अब महाराज के हमों के नहीं मालूम कि लोटा इनका फूटा है, भगवान ही बात व्यवस्था को रख दिया करते हैं, और सिद्धि कुछ नहीं, भगवान ही टेक को रख दिया करते। उनके साथ से जब आगे बढ़े, कभी जमुना में कभी गंगा में पृथ्वी संगम में स्नान किया, इधर उधर घूमे, शास्त्रार्थ में तो विजय हो गई। शाम हो गई तो रेते में ही चादरें बिछा के लोग लेटने लगे, लेट भी गए। तब गुरु महाराज ने पूछा भगवान प्रयागराज तो आ गए, अब क्या करें, बोले इन लोगों का साथ छोड़ दो, कमंडल उठा लो, छड़ी उठा लो, निकल जाओ इस दिशा में। बस तुरंत उठाया उनको, सोया छोड़ के चुपचाप गंगा किनारे किनारे निकल गए काशी की तरफ। रात भर पैदल चले, बड़ा सवेरा हो गया, सूर्य उदय हुआ तो रुक गए। हाथ मुंह धो के गंगा किनारे और बोले, भगवान अब तो साथ भी छोड़ दिया, अब क्या आदेश है? तो बोले, जो कपड़ा पहन रखे हो शरीर में, ये उतार के रख दो यहाँ पर। गंगा किनारे कपड़े रख दिया, गंगा में डुबकी लगा के आए। तो बोले, अब? बोले, बस कपड़ा यहीं पड़ा रहने दो, कमंडल उठाओ, छड़ी उठाओ, निकल जाओ आगे और इस दिशा में। बस दो उपवास, तीन उपवास, आए दिन की घटना थी। महाराज पेट के लिए भी कभी भिक्षा नहीं करते थे, भगवान ने पकड़ के घर छुड़ाया है, हमने तो छोड़ा नहीं। तो जिसने घर छुड़ाया वो भिक्षा का प्रबंध करे, मैं क्यों भीख मांगू? जिसने छुड़ाया वो भी व्यवस्था करे, इसलिए नहीं मांगते थे। हो जरा सी बगीचा में ममता होगी, बौर आया तो फल भी आएंगे, खाऊंगा, पड़ा रहूंगा। उस जरा सी ममता का परिणाम ये निकला, भगवान लंगोटी तो खोल के फेंकवा दिए, दिगंबर बना के विदा कर दिया। तो वेश भी भगवान ही दिया करते। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जी।